सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।
हम सभी लोग इस संसार में अपनी अज्ञानता और आसक्ति के कारण सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं। हमारे ज्ञान में और हमारे चारित्र की निर्मलता में बाधक बनने वाली हमारी अपनी दशाएं हैं, जिसे कर्म बंद न करना हो, जिसे संसार से मुक्त होना हो, आचार्यों ने लिखा है कि वो कषाय न करे। कषाय की तासीर ऐसी है कि जैसे हमें कोई व्याधि हो जाए और उस घाव में होने वाली खुजलाहट को आराम पहुंचाने के लिए हम और अधिक खुजलाएं तो क्षण भर को लगता है कि आराम मिला, लेकिन पीड़ा और बढ़ जाती है। यही तासीर कषायों की है। दूसरी उपमा कषायों को दुर्गंध की दी है, जैसे एक कण भी दुर्गंध का पूरे वातावरण को दूषित कर देता है, ऐसे ही हमारे मन में उत्पन्न होने वाली कषाय हमारे अपने मन को, हमारे परिणामों को और आसपास के वातावरण को दूषित कर देता है। जैसे कि भोजन में बहुत स्वादिष्ट भी क्यों ना हो, एक कण रेत का आ जावे तो वो पूरे भोजन के स्वाद को नष्ट करने में कारण बनता है, ऐसे ही हमारे अपने जीवन के अच्छे विचारों को नष्ट करने में ये कषाय कारण बनती है। हम चाहते हैं कि अच्छा सोचें, हम चाहते हैं कि अच्छा कुछ करें, लेकिन कषाय के चलते ना अच्छा विचार आता है, ना हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। इसलिए हमें इस कषाय के स्वभाव को समझ करके उससे बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत प्यासा व्यक्ति सहसा कहीं पानी का कुआं देख करके और पानी खींचे और पानी खींचने के लिए वहीं रखा हुआ घड़ा उसमें डाले और देखे कि जब ऊपर खींचा तो खाली घड़ा बाहर आया। कारण क्या है? तो उस घड़े में छिद्र थे। वे छिद्र जैसे कि उस पानी को घड़े में संग्रहित होने में बाधक बनते हैं, उस पानी के निकल जाने में सहयोगी बनते हैं, ऐसे ही ये कषायें हैं घड़े में चार छेदों की तरह हमारे अपने अच्छे करने और अच्छे सोचने में बाधक बनने वाली ये कषायें हैं। इनके कई रूप हैं जो एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं, परिवर्तनीय हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। हमें इन कषायों का बहुत अनुभव है, अभ्यास भी बहुत है। कोई भी जीव जो संसार का अनुभव करता है वो कषाय से रहित नहीं है। जो संसार से ऊपर उठ गए हैं वे ही कषाय से रहित निष्कषाय अवस्था को प्राप्त करते हैं। हम सब जो है कषायवान हैं। तब ऐसी स्थिति में ये कहना कि कषाय न करो आसान नहीं जान पड़ता। तो कषायों को हम क्या करें, कैसे जीतें? और हमारे भीतर ये कषायें, ये कषाय का संस्कार आया कैसे है, बढ़ता कैसे है? फसल काट करके और बीज बना करके रख लिया जाए तो आगे की फसल और आएगी। सो ऐसे ही कषाय की फसल काटते हैं और उसके बीज को अपने पास रख लेते हैं तो और फसल आती है। ये रोज हम कषायों की खेती करते रहते हैं। कृषि विलेख ने कषाय वो है जो कि हमारे परिणामों के खेत में निरंतर शुभाशुभ बीजों को डाल करके उनकी फसल करने में कारण बनती है। ऐसी ये कषाय है। तो हम क्या करें, उस बीज को जला देवें, उसे संचित ना करें? ठीक ऐसे ही जैसे कि बीज को नष्ट करने पर या उसे संचित नहीं करने पर आगे कोई वृक्ष नहीं उगता, कोई फसल नहीं आती, ऐसे ही या तो कषायों को उसी समय जला देवें और या फिर उन कषायों का संचय न करें, ज्यादा देर तक अपने भीतर न रखें, निकाल देवें तुरंत के तुरंत, तो इन कषायों पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। पहले ये देख लें कि इन कषायों को कौन हमारे भीतर संचित करने में कारण बनता है। तो एक सूत्राचारी भगवंतों ने लिखा, कषायोदयात तीव्र परिणामास चारित्र मोहस्य। ये कषाय चारित्र मोहनी की प्रकृतियां हैं, 16 प्रकार की हैं, 9-9 कषाय हैं, सब मिलकर के इनका बड़ा परिवार है, 25 लोग हैं ये, जो हमें 24 घंटे घेरे रहते हैं। एक क्षण भी हम उनसे विमुख नहीं हो पाते हैं, हम हमेशा इनका ही साथ देते हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे इनको जीतें? ज्यादा कुछ नहीं है। कषाय का उदय दुखदाई नहीं है उतना जितना कि कषाय के उदय में पुरुषार्थहीनता के चलते हम उसे तीव्र बना लेते हैं। कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य,
चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय तब होगा जबकि कषाय के उदय में हम अपने परिणाम तीव्र कर लें। होता यही है, आपने हमसे दो बातें कही तो हम कमजोर थोड़ू, हम चार के हैं। हमारे कषाय का उदय था ये बात जुदी है, लेकिन दूसरे की दो बातें सुन करके वो जो हम कषाय की और उदीर्णा करा लेते हैं वो आगामी कषाय के लिए कारण बनते हैं। और हम वो दो बातें सुन करके और चुप रह जावें तो भी हम रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कषाय का उदय हमें जबरदस्ती कषायवान बनाने के लिए कहे। हम चाहें तो उस कषाय के उदय को और वहीं के वहीं शांत कर देवें, लेकिन हमारा संस्कार तो ऐसा है कि हम उसे जैसे अग्नि हो तो उसमें और घी डालते हैं, ईंधन डालते हैं और उसे बढ़ा देते हैं, अपनी ही नहीं दूसरे की भी। परस्पर एक दूसरे की कषायों को बढ़ाने में निमित्त बनना अपने ही अंदर कषायों के संचय करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। इसलिए सावधानी रखें, दूसरा कषायवान है तो उसे देख करके हम क्यों और अधिक अपनी कषायों को तीव्र करें। ऐसा विचार हरेक के मन में बना रहे तो एक दूसरे के कषायों में हम निमित्त नहीं बनेंगे, बल्कि एक दूसरे की कषाय को मंद करने में हम निमित्त बन सकते हैं। ये परस्पर जो गृहस्थी बनाई जाती थी, मैं तो सोचता हूं उसका एक ही कारण था कि एक अकेला अपनी कषायों को नहीं जीत पाता तो मुनि नहीं बना, दो जने मिलकर जीतेंगे। इसलिए गृहस्थी बनाई थी कि हमें अगर कषाय तीव्र होने लगे तो तुम संभाल लियो, तुम्हें हुई है तो हम संभाल लें, मनो दो ही जने एक दूसरे की समारवे की जगह बड़ा उठे तो गृहस्थी जंजाल हो जाती, वरना जंजाल नहीं थी। ये तो परस्पर एक दूसरे के सहयोग से अपना मोक्ष मार्ग बढ़ाने के लिए प्रक्रिया थी कि हम अकेले, हम में सामर्थ्य नहीं है कि कषाय जीत सकें। हजारों मौके आएंगे जब हम हार जाएंगे तो कहते कि कोई बात नहीं, हम हारन लगे तो तुम संभाल लेना। बहुत आसान सा तरीका है घर गृहस्थी में एक दूसरे के कषाय के उदय में निमित्त न बनना, कषाय का उदय आ जावे तो उदीर्णा कराने में कारण न बनना। ये बहुत आसानी से एक दूसरे के सहयोग से किया जा सकता है। एक दूसरे के परिणामों को शांत किया जाने में हम अपने जीवन को लगा सकते हैं। दूसरा हमारे परिणामों को निर्मल बनाने में कारण बने। हम अपने परिणामों को निर्मल नहीं बना पा रहे तो दूसरे के निमित्त से बनाएं। अभी तो ऐसा है कि हम अपने परिणामों को दूसरे के निमित्त से कलुषित बना लेते हैं और दूसरा हमारे निमित्त से अपने परिणामों को कलुषित कर लेता है। जरा सा परिवर्तन इन दिशा देनी है इन कषायों को, और ज्यादा कोई बहुत कठिनाई नहीं है कषायों को लेकर। कषाय की तीव्रता पहचानना हो तो आचार्य भगवंतों ने 5-7 बातें लिखी हैं कि अपने कषायों की तीव्रता पहचानो ताकि कषाय की तीव्रता से बच सको। जिस क्षण में साधु त्यागी व्रति के प्रति निंदा का भाव आवे, समझना कि मैं कषाय की तीव्रता से प्रेरित हूं। पहला कारण सज्जन पुरुषों की निंदा का भाव अगर मन में आया है तो बिना कषाय की तीव्रता के नहीं आता। कषाय की मंदता जिसके होगी वो निंदा का भाव अपने भीतर ला ही नहीं। जब जब भी मेरे भीतर पूज्य पुरुषों के प्रति निंदा का भाव आवे तो समझना कि मेरी तीव्र कषाय है और मेरा ही अहित करने वाली है, और किसी दूसरे का होना नहीं होना वो उसके अपने उपादान पर निर्भर है। इतना ही नहीं, धर्म के विरोध करने का भाव मन में आवे या कि धर्म में बाधा डालने का मन होवे तो समझना कषाय की तीव्रता। व्रत नियम दूसरे को लेते देख करके और उसे व्रत नियम से विमुख करने का भाव होवे या व्रत नियम के अनादर करने का भाव मन में आवे तो समझना कि हमारे कषाय की तीव्रता चल रही, भारी कर्म बंध का उपाय हम कर रहे हैं और दूसरे का कुछ नहीं है, स्वयं का। यदि चारित्रवान पर चारित्रहीनता का दोष लगाने का भाव उत्पन्न होवे तो समझना बिना तीव्र कषाय के नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, संकलेश पूर्वक व्रत नियम इत्यादि को धारण करना और अपने यश ख्याति के लिए व्रत नियम इत्यादि को धारण करना समझना कषाय की तीव्रता में किया जा रहा है ये काम, कषाय की मंदता में ऐसा खोटा काम नहीं है। ऐसा वेश धारण करना जिससे कि स्वयं भी संकलेशित हो और दूसरे के संकलेश में भी कारण बने, ऐसे वेशभूषा धारण करना, ये सब कषाय की तीव्रता का काम। सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि कौन कषाय मंद है कौन कषाय की तीव्रता है, लेकिन क्या करें, कषाय से प्रेरित होकर के और हम समझ थोड़ों पाते हैं कि हम इस समय तीव्र कषाय से गुजर रहे हैं या कि कषाय की मंदता है। इतना ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं कि तीव्र होती कषायों को पानी डाल करके जैसे अग्नि को बुझा दिया जाता है, उसे मंद कर दिया जाता है, ऐसी अपनी कषायों को पहले नंबर मंद करने का प्रक्रिया करें, कषाय तीव्र ना हो पावे। क्योंकि तीव्र कषाय हमारे परिणामों को खोटा करती, हमारी श्रद्धा को जमने में बाधक बनती, दो काम करती कषाय, हमारे भीतर जमती हुई श्रद्धा को तोड़ने में कारण बनती। ये द्विमुखी प्रकृति है अनंतानुबंधी कषाय, जो श्रद्धा को भी तोड़ती और आचरण को समीचीन नहीं होने देती, व्रत नियम इत्यादि लेने में बाधक बनती है अप्रत्याख्यान कषाय, महाव्रत लेने में बाधक बनती प्रत्याख्यान कषाय, और हमारे यथाजात वीतराग स्वभाव को प्राप्त करने में बाधक बनती संजलन कषाय। ये कषायों की तासीर ऐसी है। तो जब जब भी हमारे मन में व्रत नियम के प्रति उत्साह जागृत हो तो समझना पीठ थपथपाना कि कषाय की मंदता है इसलिए ऐसा हुआ, और जब जब भी व्रत नियम के प्रति अनादर का भाव हो कि का धरो में इतने जने तो लाए हैं का भाव आज तक उनको, ऐसा मन में भाव आवे तो समझना कि कषाय की तीव्रता है, दूसरे ने जो करो सो वो जाने, हमारे परिणाम तो टटोल ले हम कि हमारे मन में भगवान के कहे गए व्रत नियम के प्रति अनादर का भाव आना कषाय की तीव्रता है। जैसे भगवान की वाणी के प्रति अनादर का भाव आना ये अश्रद्धान है, ऐसे ही भगवान की कही वाणी में जो व्रत नियम है उनके प्रति उत्साह नहीं होना अनादर का भाव आना ये तीव्र कषाय का। अपने परिणाम स्वयं टटोले जा सकते हैं, दूसरे के नहीं भैया, ये कसौटी दूसरे के परिणाम परखने की नहीं है, ये अपने परिणाम परखने, हमारी श्रद्धा और हमारे आचरण दोनों को विकृत करने वाली ये कषायें हैं। टोडर मलबी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि जिन्हें कर्म बंध ने करने हो इतनी कषायें नहीं करें, बताई जिन्हें कर्म बंध न करना हो ते कषाय न करें, और हम सब जीव निरंतर जो है कषाय में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कषाय की मंदता का नाम विशुद्धि है और कषाय की तीव्रता का नाम संकलेश है। इतना ही कर लेवे कि कषाय की तीव्रता या संकलेश से बच जावे, कम से कम कषाय की मंदता बनी रहे, तो देवगुरु शास्त्र का स्वरूप समझ में आता है। व्रत नियम इत्यादि लेने के प्रति भावना उत्पन्न होती है, सज्जन पुरुषों को देख करके मन में हर्ष का भाव आता है, वरना ये सारे भाव नहीं आएंगे, सिर्फ मिथ्या भाव ही हमारे भीतर आएंगे इन कषायों की तीव्रता के चलते। इसलिए अपनी संभाल स्वयं करनी चाहिए भाई, जीवन को संयमित करने वाली और जीवन को श्रद्धा से समन्वित करने वाली हमारी कषायों की मंदता ही है, हम उस कषायों की मंदता को प्राप्त करें। निष्कषाय व्यक्ति तो यहां कोई है नहीं, इसलिए जब कषाय हैं भी अगर हमारे जीवन में तो उन कषायों से हम कुछ उन सब के चलते हुए भी अपने आचरण और अपने श्रद्धान को जरा ठीक ठीक बना लें। जैसे कि सारा जाता देखकर आधा लीजिए बांट ऐसा कहते, यही प्रक्रिया है कि जब कषाय करनी है तो जरा इस तरह से करें कि मेरे व्रत नियम में और श्रद्धान में बाधक ना आवे, तो अनंतानुबंधी कषाय बाधक बनती है उसको हटा दो, अप्रत्याख्यान बाधक बनती है उसको हटा दो ताकि व्रत नियम हो जावे, संयम लेने में बाधक बनती प्रत्याख्यान उसको हटा दो, रख लो अकेली कौन सी, रख लो कह रहा हूं तो ऐसा नहीं समझना कि समर्थन कर रहा है। अब क्या करें, वही है कि आधा जा सारा जाता देख करके आधा नीचे बात, तो ये तीन कषायें तो मेरे लिए भारी असंयम में डालने वाली हैं, संसार बढ़ाने वाली हैं, अकेली रही संजुलन कषाय जिसके उदय में मैं संयम का पालन कर सकता हूं और अपने परिणामों को निर्मल बना करके एक दिन इस संजुलन कषाय को भी नष्ट करके अपने यथाख्यात स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए सबसे पहले मन में आना चाहिए महाव्रतों को धारण करने का भाव, जिससे कि कषाय की जो तीन चौकड़ी हैं वे नष्ट हो जावें और मैं संयमित होकर के अपना जीवन जितना हो सके उतना जीऊं ताकि कषायों पर विजय प्राप्त कर सकूं। जो कषाय पे विजय प्राप्त करता वो संयम धारण कर लेता, या जो संयम धारण करता वो धीरे धीरे कषायों पर विजय प्राप्त कर लेता, दोनों तरह से है, प्ररूपण करने की शैली है भैया, इसमें और कोई बात नहीं है, दोनों एक साथ होती साइमल्टेनियस होने वाली प्रक्रिया है, कषाय जावे तो संयम आवे कषाय जावे, दो ही एक साथ होने वाली है, सुनिए कि पहले कषाय चली जाए बाद में आए संयम, या पहले संयम आए बाद में कषाय जाए, नहीं दो ही एक संग हो। इसलिए हमें इस बात को विचार करके और जिसमें हमारे संयम में बाधा ना हो हम अच्छा सोच सकें अच्छा कर सकें, कषाय तो है लेकिन उस कषाय के चलते पुरुषार्थ को जागृत करके अच्छे करने और अच्छे सोचने के बारे में हम निरंतर पुरुषार्थ करते रहें, प्रयत्नशील बने रहें। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं, शायद बात समझ में आएगी। एक नवयुवक जो है धर्म सभा में प्रवचन सुन करके घर आया, भोजन की थाली पर बैठा था तो जीवन साथी ने कहा कि अभी धर्म सभा से आ रहे क्या? हाँ वहीं से लौटा हूँ। हमारे भैया भी प्रवचन सुनने जाते होंगे? हाँ तुम्हारे भैया भी जाते हैं प्रवचन सुनने। हमने सुना है हमारे भैया तो जो है वो दीक्षा ले रहे हैं, तो अब देखिएगा। सब तरह के भाव हैं, ऐसा सुनकर के सबको अलग अलग भाव आएंगे। तो भोजन की थाली पर बैठे होने के बाद भी कहा कि वो ले नहीं पाएंगे। अरे वो तो विचार कर रहे हैं लेने का, बोले जब लेने ही है तो इतना सोचना क्या, सोचने वाला लेता नहीं है लेने वाला ज्यादा सोचता नहीं है। कषाय मंद हुई और ले लिया, अब इसमें इतना सोचना क्या, कल के दिन फिर तीव्र हो जाएगी तो फिर नहीं लेना, ऐसा व्यक्ति तो ले नहीं सकता जो सोचता रहता हो, ऐसा कह दिया। तो उनकी जीवन साथी को जरा आ गई वो, चले अच्छा आप उनके बारे में ऐसा कर रहे हैं, आपको कोई कहे कि ले लो तो आप ले लेंगे क्या? अपनी ही बात अपने ऊपर लागू हो गई। क्षण भर के अंदर कहते हैं घटना जहां लिखी गई है शास्त्र में सच लिखी गई है, ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, ऐसा संयोग बना कि उसी क्षण भोजन की थाली पर से उठकर के खड़े होकर जाने लगे। तो कहां कहां जाते, बोले तय हो गया मैं संयमित होकर के जीवन जीऊंगा। मुझे समझ में आ गया कि जब जब कोई क्रोध की बात करता है तब मैं बिना सोचे समझे क्रोध कर लेता हूं, जब कोई मेरे मन की बात नहीं कहता तो मैं बिना सोचे समझे अहंकार कर लेता हूं, तब फिर अगर मुझे संयमित होने की बात कही जाए तो मुझे इसमें सोचना कि मैं संयमित हो सकता हूं। आप समझ रहे हैं, गुस्सा होने की बात से हम बिना सोचे समझे गुस्सा हो जाते हैं तो संयम लेने की बात सुनते ही साथ और हमारे मन में बिना सोचे समझे संयम क्यों नहीं आता? इतनी सी बात में, और कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के समय की है और जाकर के समो शरण में
और दीक्षित हो। एक बात हमारी कषाय को बढ़ा सकती है, उसे ही हम चाहें तो हमारी कषाय को इतना मंद कर सकती कि हमें संयम की तरफ ले जा सकती। चाहते तो अहंकार करते कि मुझे चैलेंज दे रहे हो। नहीं, चैलेंज नहीं, बात तो ठीक कह रहे हो कि मैं इतना सोच क्यों रहा हूं, अगर सही में थोड़ा है तो इसी क्षण हो जाऊं। हम जीवन में रोज इस तरह की बातों से गुजरते हैं भैया, और उनमें से हम किस तरह से उन अपने कषाय को बढ़ाने वाली दृष्टि रखने के कारण उसका अर्थ निकाल लेते हैं, ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। हमें जब जब भी कषाय का अवसर आवे तो अपने अहित करने वाले परिणामों से बचना चाहिए और दूसरे के अहित करने वाले परिणामों से बचना चाहिए, तो ही कषाय की मंदता कहलाएगी। हम कषायों को दिशा दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में। हम चाहें, हमने पहले भी आपसे कहा था कि लोभ के उदय में या लोभ कषाय के चलते हम चाहें तो दुकान पर बैठकर चार पैसे कमा सकते हैं, उसी लोभ कषाय के चलते हम चाहें तो अपने आत्म कल्याण के लिए व्रत नियम ले सकते हैं, चार बातें धर्म की सुनने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। लोभ के उदय में ही स्वाध्याय कर रहे हैं अपन, लोभ के उदय में ही व्रत नियम होता है, लेकिन लोभ की मंदता में होता है, तीव्रता आ जावे तो जाकर के चार पैसे के लिए, भौतिक सुखों के लिए, आत्म सुख की ललक भी लोभ कषाय की मंदता में और लोभ कषाय की तीव्रता में भौतिक सुख सुख जान पड़ते हैं। ये मंदता और तीव्रता हमारे हाथ में है, पुरुषार्थ पर हमारे निर्भर करता है। कर्माधीन इतना नहीं है जीवन जितना अपन ने सोच रखा है कि आहे जब हमारे चारित्र मोहिनी को उदय है वे सो व्रत नहीं ले पा रहे, तो जो कवे घट है भैया कुआ है तुम आओ जो चारित्र मोहिनी घट आ गई को नहीं आवे बारो में कोई समाओ कमिटमेंट भाव आए अभी तक क्या हो तुम तो हम चले फिर तुम्हारे संगे मोक्ष मार्ग पर। हमें स्वयं अपने आत्मा का साथ देना पड़ेगा। इन कषायों का साथ देते देते हमारा जीवन निकल गया, कभी हमने अपने उस वीतराग भाव का साथ नहीं दिया है, और किसके साथ का इंतजार है। जिस दिन हम अपने वीतराग भाव के साथ हो जाएंगे उस दिन ये कषायें एक तरफ हट करके हमें आगे बढ़ने का रास्ता दे देंगे। इसलिए कषायों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि उन्हें ठीक दिशा देवें। माँ भी जो है कान पकड़ करके बेटे को डांटती है, लगता है जैसे क्रोध कर रही हो। ठीक है, क्रोध तो है ही, लेकिन उस क्रोध के पीछे छिपा हुआ सद्भाव नहीं दिखाई पड़ता, वो उसे सुधारने के लिए जाती। हम बचपन में देखा करते थे कि ज्यादा ऊधम किया मान लो तो क्या कहती थी माँ, वो देख रहे हो वो लकड़ी जल रही हो, निकालूं क्या? अब की बात नहीं है, अब तो गैस का चूल्हा है, तो पहले लकड़ी वाला चूल्हा रहता था। तो धीरे से उनने आगे थोड़ी खींची तो अपन चुपचाप नहीं रहने दो, नहीं करेंगे। अच्छा, जबकि वो ही माँ क्या वो जलाना चाह रही क्या? नहीं, जलाना नहीं चाह रही, वो तो सिर्फ हमें भले रास्ते पर लगाने का उपाय कर रही है। हम कषायों के माध्यम से और अपने भले और दूसरे के भले का भी काम कर सकते, और उन्हीं कषायों के चलते अपना और दूसरे का हित भी कर सकते। ये दिशा हम तय करते, और वही माँ अगर जरा सा उसने बेटे की उंगली जल जावे तो दिन भर को ठंडक पहुंचाने के लिए मुंह में डाले बैठी रहे, और अभी थोड़ी देर तो पहले कह रही थी कि मैं जो है जलाऊं क्या, जलाना नहीं चाहती। उसके परिणाम खोटे नहीं हैं, उसके भीतर परिणामों में हित करने का भाव है। भैया कषाय के उदय में ही हित की प्रवृत्ति होती है, कषाय के उदय में ही अहित की प्रवृत्ति होती। तीव्रता हो जाएगी तो अहित की प्रवृत्ति होगी, कषाय की मंदता होगी तो हित की प्रवृत्ति होगी, और निष्कषाय होगा तो दोनों से ऊपर उठ करके आत्म कल्याण की प्रवृत्ति होगी। भैया इसलिए अपन को इसमें से ये तय करना है कि हमें इन कषायों के उदय में भी किस तरह से अपने जीवन को दिशा देनी है। एक और छोटी सी घटना सुनाऊं। दो मित्र थे, कहीं पढ़ा था मैंने, कन्हैयालाल मित्र प्रभाकर हुए, वो इस तरह की बात घटनाएं संस्मरण लिखते हैं। अच्छा लगा मुझे, उसमें दो मित्र थे, अब दोनों प्रोफेसर थे कॉलेज में, कोई एक मीटिंग रखी गई थी, जलसा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, वो तो सफल नहीं होगा ऐसा लग रहा था। तो मित्र ने कहा कि चलो अनाउंसमेंट हम ही करते हैं, प्रोफेसर होकर के और उस जलसे का अनाउंसमेंट करने चले गए वो, और उस अनाउंसमेंट का इतना असर हुआ कि जलसा जो है सफल हो गया। लेकिन जरा सी चूक हो गई कि उन मित्र ने इतना सब मेहनत करी थी, उसका किसी ने उनको श्रेय नहीं दिया, तो दूसरे वाले मित्र पर उनकी सारी गुस्सा उतर गई कि हमने इतनी मेहनत करी और हमारा नाम भी तुमने नहीं पुकारा, और इस बात पर चिंतनाचनी हो गई। बहुत जल्दी हो जाती तो देर नहीं लगती, वर्षों का वो किसी के प्रति
अनुभव तो आप लोगों को होगा। हाँ, मैंने तो ये पढ़ा था कि जिंदगी भर जिसने पैर दबाए हैं, एक दिन पैर दबाने में चूक जाए तो वो ही पैर उसके माथे पर पड़ता है। देखो तो हमारी कषाय की विडंबना, जिंदगी भर जो हमारा उपकार करे, एक क्षण में कषाय की तीव्रता में हम उसका अपकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कषाय से बचना चाहिए, ये दूसरे का अपकार नहीं, अपने ही अपकार में कारण बनने वाली प्रक्रिया है। तो हो गई तनातनी हो। अब वो जो दूसरे मित्र थे वो मान रहे थे कि भाई गलती तो हो गई, तुमने इतनी मेहनत करके जलसा सफल बनाया, नाम हम सबका हुआ, लेकिन काम तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, हम तुम्हारा नाम लेना भर भूल गए, वो हमारी गलती हो गई, अब क्या करें, कोई झुकने तैयार नहीं। हाँ, कषाय के साथ में ये है कि वो ये चाहती कि दूसरा झुके। हाँ, दूसरा झुके, मान कषाय आ जावे तो वो ये चाहती कि सब हमारे चरणों में झुके, और नहीं झुके तो वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती। ये क्रोध और मान तो दिखाई पड़ते हैं, ये द्वेष रूप हैं, द्वेष रूप, ये पित्त की तरह है, जैसे पित्त भड़कता है ऐसे ही क्रोध और मान है, और दो है कफ के समान, ये जीव को जकड़े रहते हैं, जैसे माया और लोभ, सुझे दिखाई नहीं पड़ते। लोभी आदमी को कोनो खराब नहीं कहते, गुस्सा करे वाले को सब खराब कहते, जबकि गुस्सा सबसे कमजोर चीज है, लोभ सबसे मजबूत है, आखिरी में जाता है, सूक्ष्म लोभ दसवें गुण स्थान तक रहता है, और लोभ से ही सबके तंतु जुड़े हुए हैं, उस लोभ की वजह से मायाचारी करता, मायाचारी प्रकट हो जाती तो अहंकार आ जाता, अरे वाह ऐसे कैसे, और अहंकार पर चोट पहुंचे तो क्रोध आता है। तार कहां से शुरू हुआ था, लोभ से, सारे पापों की जड़ इसलिए लिखा है कि लोभ है, वहीं से सब शुरू होता है। अब ये चीज की दूसरा हमारे सामने झुके, हम क्यों झुके, तो उसमें से अब कषाय बढ़ाना चाहो तो बढ़ाओ, घटाना चाहो मंद करना चाहो तो करो। तो एक चिट्ठी लिख करके भेजी दूसरे मित्र को, प्रोफेसर थे वो भी और ये भी प्रोफेसर, उनने लिख करके दो लाइनें भेजी कि सुनो, अगर हमसे नाराज हो तो आज तो हमारा मन तुम्हें घूंसा मानने का हो रहा है, और अगर तुम हमसे नाराज हो तो हमारा मन तो आज तुम्हें घूंसा मानने, उसमें तो कुछ और लिखा था हमने बदल दिया, सो हमारा मन आपको घूंसा मानने का हो रहा, और सुनो अगर तुम्हारी थोड़ी कषाय मंद हुई हो तो आज चाय पर आ जाओ तो एक एक चाय हो जाए। अब देखिएगा, जैसे ही वो पहुंची छोटी सी स्लिप, एक झुका तो दूसरा, तो एक कषाय मंद कर लेवे तो दूसरे की ज्यादा देर नहीं टिकेगी, और एक कषाय तीव्र करे तो सैकड़ों लोग खड़े हों उनकी मंद कषाय भी तीव्र हो जाएगी। ये ध्यान रखिए, बस उतनी सी चिट पे लिखा हुआ पढ़ करके भागे भागे चले आए, और जो बात बिगड़ी थी वो आसानी से बन गई। आखिरी में कहने लगे कि उस दिन की गुस्ताखी के लिए बहुत दुख है हमारे लिए, आप हमें क्षमा करना कि हम आपसे नाराज हो गए। बताइए ये परिणाम कहां से आ गया, ये परिणाम थे मेरे भीतर लेकिन उस कषाय के चलते वो प्रकट नहीं हो रहे थे। मेरे भीतर अच्छा करने का, अच्छा सोचने का सब कुछ पड़ा हुआ है,
मेरे स्वभावगत हैं वो सारी चीजें, लेकिन क्या करें इस कषाय की पराधीनता के चलते वो सब लुप्त हो जाता है और खोटे विचार खोटे कर्म में हमारी प्रवृत्ति होने लगती है। भैया खोटे विचार और खोटे कर्मों से बचने का एक ही उपाय है कि कषायों को मंद करें, उनको दिशा देवें और अपने जीवन में अच्छा करने और अच्छा सोचने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करते रहें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिव्य दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ,
हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हूँ,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हो फूल झड़ियां,
बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां,
दिन रात लुटाया करते हो शम सम की अविनश्वर मणियां,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर वास वेखो भानु शिव कानी है,
छाहूं द्रव्य जान वेखो बंध विधि भान वेखो स्वपर पिछान वेखो परम प्रमाणी है,
अनुभवताय वेखो जीवों के जताय वेखो साहू न सताय वेखो भव्य और यानी है,
जहां तहां तार वेखो तार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही जिन वाणी है,
वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो,
उद्वक चंदन तन बुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई,
धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे
परम पूज्याचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संगत मुनि श्री श्यामा सागर जी महाराज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के पावन चरणारविंदों को अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यमर्पयामीति।
चीजों में फंस करके क्यों अपने उस स्वभाव को भूल रहा हूँ और इसमें मान कर रहा हूँ प्रतिष्ठा पा रहा हूँ कि अरे मैं तो इस तरह हो गया हूँ, अब कुछ दिन तो ये चला, अब क्या हुआ एक बार कि कोई, अब जंगल में कौन सा उत्सव खाने पीने की चीज को अच्छी मिल जाए, उस उत्सव है तो उन लोगों को अच्छा कोई शिकार वगैरह मिल गया तो वो सियार थे वो सब बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न होकर के उनने हुआ हुआ कहा तब उसने रहा नहीं गया, भले ही राजा बना बैठा था लेकिन भीतर की बात तो कहां जाएगी, एकदम थोड़ी हुआ होगी तो जी भी उन सबके बीच में, और इसने भी आवाज लगा दी हुआ हुआ तो सब पहचान गए कि भैया तो सियार है, है? तो क्या हुआ जान की नौबत आ गई, जान से हाथ धोना पड़ा, सबने उसको समाप्ति कर दिया। दूसरे का व्यक्तित्व ओढ़ने से क्या हुआ, जीवन ही नष्ट हो गया। हमारा अपना सबका जीवन भी नष्ट होता है क्यों, पर्याय को हम अपना मान लेते हैं, पर्याय में ही अपने पने का जो भाव है उसी से तो संसार में जन्म मरण हो रहा है। मैं इस शरीर से भिन्न हूं, मेरा स्वभाव अलग है, शरीर का स्वभाव अलग है, ऐसा जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से उनकी भक्ति और स्तुति करने से अपने भीतर भाव उत्पन्न होना चाहिए, उतनी देर को ही सही अनुभूति होनी चाहिए। अपन को तो उस समय भी यही लगता है कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं धनवान हूं या कि मैं कोई ऑफिसर हूं, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में इस पर्याय बुद्धि भी नहीं जाती है। कोई पन्नत बाद में बैठ जाओ तो उसने कहते के कहा तुम्हें दिखा नहीं है कहा हम इतने बैठे थे ना, अच्छे हम बड़े हैं हम इतने बैठे हैं, ऐसा पूजा में भी हमने कई लोगों को देखा कि उनकी कोई जगह स्थित जगह फिक्स हो जाए वो तो कोई जाकर बैठ जाए तो वो फिर पूजा के ऊपर भी जोड़ में पहले एक हिसाब किताब बने हैं पहले कि तुम तो बैठे कैसे तुम्हें मालूम है रोज कहीं से पूजा कर। अब बताओ आप भगवान की स्तुति करने आए हुए हैं और इस तरह का भाव आ जाता है, ये अपना अविवेक है भाई। उस समय तो इन सब पर्यायगत भेदों से ऊपर उठना चाहिए और विवेक जागृत करके और फिर अपनी निजता का बोध हमें हो गए तो हमारी वो भक्ति श्रेष्ठ मानी जाएगी। दादीराज महाराज अंत में भगवान की स्तुति करते हुए दो तीन पद और शेष हैं कह रहे कि देव स्तोतुम त्रिद्रुवणिका मंडली गीत कीर्ति तो तूर्ति ताम सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनो या तस्य क्षेमम न पदमर्तो जातु जो होति पंथा तत्व ग्रंथ स्मरण विषय नैष मो मूर्ति मर्त्या। हे भगवान आपके गुणगान जो व्यक्ति करता है कैसे हैं आप, कैसा गुणगान करे वो आपका, हे देव त्रिद्रुवणिका मंडली गीत कीर्ति तो तूर्ति ताम और सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनो यह आप केवल ज्ञान की मूर्ति स्वरूप हैं। एक चीज मन के अंदर ये स्पष्ट हो और कैसे हैं जितनी स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनके द्वारा भी आपकी कीर्ति गाई गई है। वीतरागता का इतना प्रभाव है कि जिनसे सारा संसार प्रभावित है उनसे आप प्रभावित नहीं हुए यही आपकी वीतरागता का प्रभाव। वे सब आपके चरणों में हैं जिनके लिए व्यक्ति कितनी कोशिशें करता है पाने के लिए वे सब आपके चरणों में उपस्थित हैं आपकी स्तुति गा रहे हैं। स्वर्ग की समस्त अप्सराएं ये आपकी निर्दोषता और आपकी वीतरागता का प्रभाव है। तो पहली चीज कि आप वीतराग निर्दोष हैं और दूसरी चीज कि आप समस्त पदार्थों को जानने वाले हैं केवल ज्ञान से युक्त हैं। ऐसा यदि व्यक्ति के मन में निरंतर भाव बना रहे तो मोक्ष मार्ग पर चलते हुए उसके मार्ग में कभी बाधा नहीं आ सकती और ना ही सिद्धांत ग्रंथों के स्मरण में उसे कभी कोई मुश्किल जान पड़ेगी। दो चीजें कह रहे हैं भगवान के केवल ज्ञान स्वरूप का अगर ध्यान बना रहे तो हमारे ज्ञान में कभी कमी नहीं आएगी और भगवान की निर्दोषता और वितरागता अगर हमारे दृष्टि में बनी रहे तो संसार में कोई बाधा नहीं आएगी। बाधा संसार में जो आशक्त है उससे आती है, बाधा संसार में जो अज्ञानी है उससे आती है। भगवान के केवल ज्ञान का स्मरण करके हमारे अज्ञान को हम हटा लें और भगवान की वितरागता और निर्दोषता का स्मरण करके हमारे भीतर भी वितरागता आ जावे तो बताइए आशक्ति घटने से फिर संसार में कौन हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है। हम आसानी से इस संसार से पार हो सकते। संसार से पार होने के मार्ग पर भी कोई लग जावे लेकिन अगर उसको अज्ञानता और आसक्ति घेर लेवे तो उस मार्ग में बाधा ही बाधा है। तो कह रहे कि भगवान मैं तो बहुत निश्चिंत हूं, मैं आपकी स्तुति करते हुए आपके वितराग स्वरूप की तरफ देख रहा हूं, आपके उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति की तरफ देख रहा हूं, तो मेरे मार्ग में तो बहुत आसानी है चलने में। इस व्याधि के होने से मेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आया। साथ में यही बात उनको ध्यान है, कोई ये समझे कि मैं अपने कुष्ठ रोग से मुक्त होने के लिए आपकी स्तुति कर रहा हूं तो भगवान आप भी ऐसे धोखे में नहीं रहना। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इससे, कुष्ठ रोग होने से वो देह को हुआ है और देह से मैं भिन्न हूं, ये आपसे पहले आपके दर्शन करते ही मुझे ये भान हो गया है, इसलिए मैं उससे उस रोग को व्याधि को दूर करने की स्थिति नहीं कर रहा हूं। वो व्याधि मेरे मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं दे सकती, बाधा तो मेरी अपनी कषायें मेरा अपना अज्ञान देगा। और आपकी स्तुति करने से मेरी कषायें शांत हो गई, मेरा अज्ञान मिट गया है, इसलिए मोक्ष मार्ग में अब मुझे कोई बाधा नहीं है। ऐसा जो है स्तुति करते समय अपने मन में अगर भाव आवे और अपनी प्रकृति में थोड़ा सा परिवर्तन आवे, निर्दोषता वितरागता कहो, शांत परिणाम कहो, भद्रता कहो, ये सारी चीजें जिनको अपन सुनते हैं ये अपने जीवन में जितनी जितनी बने इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। भगवान की स्तुति करके यही उनसे हमें पाठ लेना चाहिए। एक महाराष्ट्र में संत हुए हैं, उनका नाम प्रसिद्ध है एकनाथ। तो बहुत शांत स्वभाव के थे, बहुत सरल स्वभाव के थे, जैसे कि वर्णी जी का नाम आता उनके शांत और सरल स्वभाव के लिए, तो वहां महाराष्ट्र में उनका नाम आता। वो भगवान की बहुत तल्लीनता से भक्ति करते थे। तो कई लोगों को जो है ये बात अच्छी नहीं लगती, संसार में भांति भांति के लोग हैं, तो लोगों ने सोचा कि इनको क्रोध दिलाएं, कुछ ऐसा काम करें कि जिससे इनकी ये जो शांत प्रकृति है, सरल स्वभाव है, वो जरा गड़बड़ा जाए। तो एक व्यक्ति को तैयार किया कि जब एकनाथ पूजा पाठ कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो भगवान की, तो तुम उनको क्रोधित करने के लिए कुछ उपाय करना, हम तुम्हें इतनी धन संपदा देंगे। अब गरीब आदमी था वो, धन संपदा का नाम सुनते ही साथ जो है उसको लगा कि क्या दिक्कत है इसमें, इनको क्रोधित क्रोध दिलवाना अपने को, और तो कुछ करना नहीं है, कुछ मारपीट तो करनी नहीं है, ऐसा कुछ करें जिससे कि इनको क्रोध आ जावे। तब उसके कुछ समझ में नहीं आया, पूजा पाठ कर रहे थे, सुजा करके उनके कंधे पे बैठ गए। अब बताओ आप, अपन को तो कोई तनक बाजू में से निकल जावे तो पूजा खराब हो जाए अपनी, सोला बिगड़ जाए। देखो आप, उनके कंधे बैठ गया, कंधे बैठ गया, लेकिन फिर भी वे अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा में, थोड़ा सा उसको लगा कि ये तो व्यवधान आएगा और गुस्सा होएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो बड़े प्रसन्न होकर के और भगवान की भक्ति करते हुए कहते कि भगवान बड़ी कृपा करी, आप अभी तक तो सामने बैठते थे, आज तो मेरे कंधे पर ही आज जा करके बैठ गए, बड़ा आपका बड़ा सौभाग्य है मेरा तो। अब वो बड़ा चकित हुआ कि भगवान कहां से आ गए, ये तो कंधे पर मैं बैठा हूं। तो उनको कहा कि भाई भगवान थोड़ी बैठे, मैं बैठा हूं कंधे पर। वो कहते कि इस समय तो मुझे जो है वो सब भगवान ही दिखाई देता है, तुम्हारी कृपा कि मेरे कंधे पर आकर बैठे, अब चलो मेरे यहां पर अतिथि बन करके मेरा स्वागत तो स्वीकार करो। तो उसको घर ले जा करके भोजन इत्यादि कराया, वो चरणों में गिर गया कि हम तो आपको क्रोध दिलाने के लिए आए थे और उसके हमें चार पैसे मिलने वाले थे। सब
आप तो अत्यंत शांत और दयालु प्रकृति के हैं, बताओ भगवान की भक्ति करके वास्तव में क्या प्राप्त किया उसने, अपन को क्या प्राप्त हुआ आज तक? इतनी पूजा पाठ और इतनी भक्ति अपन ने करी, कभी प्राप्त हुआ? जी चीज प्राप्त भाई, दूसरे की चीज देख करके तो अच्छा लग रहा है कि चलो इनको इतनी अच्छी चीज शांति प्राप्त हुई, कितने भद्र परिणाम हैं, कोई आकुलता नहीं है, कितने ही उपद्रव को करे फिर भी ठीक है भाई। और अपने जीवन में तो जरा जरा सी चीजों में अपन राग द्वेष में पड़ जाते, अपना संसार अपने हाथ से बढ़ा लेते। वादिराज महाराज भगवान की स्तुति करके और यही हमारे अंदर भाव उत्पन्न करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि भगवान की निर्दोषता और वीतरागता हमें भी रोज रोज निर्दोष और वीतराग बनाए, और भगवान के जो केवल ज्ञान स्वरूप है वो हमारे अज्ञान को हटा करके हमारा विवेक जागृत करे, ताकि जो है हम स्वपर भेद विज्ञान करके और अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर सकें। और आगे कहते कि चित्ते कुर्वन निर्वति सुख ज्ञान दृग वीर रूपम देवत्वाम यह समय नीमा दादरे नस्वीति शेयो मार्गम सखलु सुकृता तावता पूरयित्वा कल्याणानाम भवति विषया पंचधा पंचितानाम। जो व्यक्ति चित्ते कुर्वन निर्वधि सुख ज्ञान दृग वीर रूपम देवत्वाम, आप कैसे हैं अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर इन अनंत चतुष्टय से आप युक्त हैं, सो ऐसे आपके अनंत चतुष्टय से युक्त स्वरूप को अपने चित्त में अपने हृदय में जो व्यक्ति धारण करता है, और यह समय निमाद आदरेण स्वीति, और समय पर अर्थात तीनों संध्या कालों पर जो समय है भगवान की स्तुति का, अपन लोग तीनों संध्या कालों पर भगवान की सामायिक करते हैं, वही वास्तव में स्मरण भगवान के भक्ति का समय है। साधु जन तो उसी समय पर जो है भगवान की भक्ति में लीन हो जाते, उनके ध्यान में लीन हो जाते हैं। शावक थोड़ा सा उन समयों पर भी विचार करे। पहले अपन कहते थे, बड़े लोग अपन से कहते थे, हमें तो अपने समय में ख्याल है कि संध्या को भोजन वोजन करके अंतव करके और अपन ने घर में और ऊधम कर वो शुरू करो, तो फिर मताई क्या कहती थी, ये भैया सीधे बैठो, दो ही बिनिया है भगवान को ध्यान करो, ये उपद्रव में पड़ो, खटकर्म ने करो है, खटकर्म ने करो। आप समझ में आए कि खटकर्म मतलब छह कर्म, असी मसी कृषि इत्यादि ये खटकर्म है। दो ही बिनिया अर्थात संध्या काल में तो इन पापों से बच करके और बैठो थोड़े से 48 मिनट के लिए, दो घड़ी के लिए, और भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि जो भगवान के उस अनंत चतुष्टय रूप स्वरूप का चिंतन करता है समय समय पर, माने तीनों संध्या कालों में आदरेण स्थिति पूरे सम्मान के साथ उनका स्मरण करता है, तो शेयो मार्ग सखलु सुकृति तावता पूरयित्वा, अकेले इतने मात्र से वो अपने मोक्ष मार्ग को पूरा कर लेता। बताइए, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले को भी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मोक्ष मार्ग पर चलना पूरा नहीं होगा। भगवान की भक्ति से क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए उस मोक्ष मार्ग पर चल करके भगवान के जैसा ही जो अनंत चतुष्टय उन्होंने प्राप्त किया है वो हमें चाहिए, और वही हमारे स्मरण में हमेशा बना रहे। तो कहती फिर तो मोक्ष मार्ग पूरा हो गई, कल्याणानाम पंचधा पंचितानाम, और इतना ही नहीं मोक्ष मार्ग पर पूरा चल के पंच कल्याणक को प्राप्त होता है, अर्थात आगामी जीवन में वह तीर्थंकर के पद को भी प्राप्त कर सकता है जो वर्तमान में भक्ति के माध्यम से अपने मोक्ष मार्ग पर चल करके जीवन पूरा व्यतीत करता है। तो अपन पहले भी ये जान चुके हैं कि अरहंत भगवान की भक्ति से अरहंत पद की तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, वही भाव यहाँ पर वादिराज महाराज भक्ति करते समय अपन सबका होना चाहिए ऐसा कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करते समय हम ऐसा विचार करें कि भगवान का स्वरूप कैसा है, अनंत चतुष्टय से युक्त है। उसकी उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती तीर्थंकर की कि लोक मान्य होते हैं, सर्व जगत पूज्य होते हैं। सर्व जगत पूज्यता और लोक मान्यता किसके आती है, जो प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखे उसके आती है। भगवान की सब जीवों के प्रति मैत्री है, सब जीवों के प्रति उनके मन में सद्भाव है, इसलिए वे सर्वमान्य हैं, कोई उनका शत्रु थोड़ू है, न वे किसी के शत्रु हैं, उनके सब मित्र हैं, वे सबके मित्र हैं, यही लोक मान्यता और लोक में पूजता है, और सर्वव्यापी हैं। केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ तो जिनके ज्ञान में समस्त सकल चराचर पदार्थ प्रतिभासित हो रहे, तो मानो कि वे तो सब जगह ही व्याप्त हैं। अपन लोग कहते भी हैं कि भगवान सर्वव्यापी, सर्वव्यापी को मतलब ऐसा थोड़ू है कि सब जगह बैठे हुए, वे बैठे तो अपने आत्मा के स्वरूप में ही लीन बैठे हुए हैं, सकल के ज्ञायक लेकिन तदपि निजानंद रसलीन, अपने आत्मा के ध्यान में लीन होते हुए भी सर्वव्यापी हैं, सब सकल चराचर पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे, ऐसा स्वरूप भगवान का है। अपन जब भक्ति करें तो ध्यान में आवे के देखो भगवान कैसे हो गए सर्वव्यापी, अर्थात हर समय हम हर जगह उनका अनुभव कर सकते हैं, करना चाहें वे हम हर समय हर जगह उपस्थित हैं। अपन को लगता है कि मंदरी में उपस्थित हैं, सुमंदर में तो अच्छे बैठो पालथी मार के, बाकी चाहे जैसो करते रहो, ऐसा नहीं, हर जगह उनकी उपस्थिति अपन को महसूस होवे, तो जैसा अपन अपना मन वाणी और शरीर मंदिर में अच्छा बना के रखते हैं ऐसा ही जो है और बाहर भी बन जावे, जितनी देर को सही उतनी देर को सही याद आ जावे कि अरे देखो मंदिर में तो अपने भाव इतने अच्छे थे, यहाँ आकर के बाहर क्यों अपने भाव कलुषित कर रहे हैं, अपन को नहीं करना चाहिए, तो अगर हो भी जाएंगे तो जल्दी से यहाँ वहां हो जाएंगे अपन के भैया छोड़ो क्या करना, तो कषाय कितनी रह जाएगी जो महीनों महीनों चलती थी, कम से कम तुरंत की तुरंत आई और चली गई, सुबह की संध्या तक हिसाब चुकता होगा, कल की कल से देख कल के कल पे काय को डारो के कल हिसाब बनाएंगे उसका कषाय का, नहीं इतना भी अगर अपने परिणामों में और निर्मलता आ जावे तो यही भगवान की भक्ति का लाभ है अपने लिए। ये घटना भी सबसे सबको परिचित है कि गुरु जी ने परीक्षा लेने के लिए तीन बच्चों से कहा कि जाओ हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते तो जे ले हुए के केला और ऐसी जगह खा के आओ जहां भगवान ने हुए हैं, तो तीनों गए थे, वो तीनों गए तो एक ने तो जो है जोर से दौड़ लगाई और देखा इधर उधर झांक करके कोई नहीं देखा उसको, तो फौरन उसने केला खा लिया, और दूसरे ने सोचा कि नहीं हो सकता है कोई ने कहीं से देख लिया हो, तो उसने बिल्कुल और जंगल में जाकर के एक गुफा के भीतर घुस करके वहां से खाया, अभी तक को देख ले उसने यही सोचा, और तीसरा वाला अपना केला बिना खाए वो गुरु जी के पास वापस आ गया, कहले भाई तुमने क्यों नहीं खाया और इन लोगों ने क्यों खा लिया, तो कहते गुरु जी हमने तो देखा कोई भी नहीं था वहां आसपास हमने खा लिया। दूसरे ने कहा हम तो ऐसी जगह में जहां कोई की संभव ही नहीं पहुंचने का जंगल में, कहती तुम भी ऐसी जगह ढूंढ लेते किन ले, ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि जहां कोई नहीं देखता हो, मैं तो स्वयं हूं वहां पर, मैं तो देख रहा हूं, मेरी आत्मा तो देख रही है, आपने कहा था कोई न देखने वाला हो। इसका आशय क्या है कि अगर ऐसा भाव आ जावे कि सब जगह हमें देखने वाला कोई है, जब हम ऐसा विचार करते हैं तो हमसे अपराध और हमसे पाप इत्यादि कैसे हो सकते, हमारे अंदर विकार और मलिनता कैसे उत्पन्न हो सकती है, भाई यही भगवान की भक्ति का सुफल है कि हम उनका स्मरण उनका ध्यान हमेशा करते रहें, हमें कदम कदम पर संसार घर गृहस्थी के बीच में भी बीच बीच में ध्यान आ जावे पंच परमेष्ठी का, तो बताइएगा फिर पाप हमारे द्वारा हो पाएंगे, फिर संसार में आसक्ति हमें घेरेगी क्या, हमें तुरंत ही हम अनाशक्त हो करके और विवेक पूर्वक अपना सारा कार्य कर सकेंगे, तो भक्ति जो है वो हमें इस तरह संसार के प्रपंच से बचा करके अपने आत्मस्वरूप की तरफ ले जाने में सहायक बनती है, इसका अपन लाभ लें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है,
जब जब विषया में रच पछ कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ,
वो अर्भुनि शाखा सन्नाटा उनमे वन चारी चरते हूँ।
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो।
करते तप शैल नदी तप तन तरु तल वर्षा की झड़ियों में।
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में।
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हूँ फूल झड़ियाँ।
बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियाँ।
तुम साबानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की।
अनुभवताए विखो जीवों के जताए विखो काबू न सताए विखो भव्य उर आनी है।
जहाँ तहाँ पार विखो पार के उतार विखो सुख विस्तार विखो यही जिनवानी है।
वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत बोलो।
Oh, that's good.